परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप जो आशीष प्राप्त करते हैं पत्रों के माध्यम से हम तक अवश्य लिख भेजें, ताकि हम भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि जब हम शारीरिक थे अर्थात हमें पुराना मनुष्यत्व था, पुराना आदम था, पुराना स्वभाव था, तब हम पापों की अभिलाषा में पड़ते थे और हम में मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु अब उन बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। मित्रों, आज हम उससे आगे अपने अध्ययन में बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जो इस वचन को सुनते हैं निश्चित रूप से उनके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए, उनके जीवन में आशीषों को लाने पाए। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं और परेशानी या उलझन में पड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी शांति प्रदान करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, आज आप उनसे भी बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम पाप के बंधन में कैसे बंधे हैं, देखिए पौलुस क्या कहता है। रोमियो के पत्री 7 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं इसका अर्थ स्पष्ट करता हूं। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? ऐसा सोचे भी नहीं। मेरे मित्रों, इसके विपरीत व्यवस्था के बिना मुझे पाप का बोध भी नहीं था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि अवैध इच्छा क्या होती है। परंतु आज्ञाओं के द्वारा पाप को अवसर मिल गया और मुझ में हर प्रकार की अवैध इच्छाएं उत्पन्न हो गई। व्यवस्था के बिना पाप मृतक है। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने अध्याय 6 में अपने विवाद को आरंभ करते हुए कहा था, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते जाएं? वह यहां फिर कहता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? मेरे मित्रों, इस अध्याय के प्रथम भाग में ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस कह रहा है कि व्यवस्था और पाप बराबर के हैं। पाप से मुक्त होने का अर्थ, यदि व्यवस्था से मुक्ति है तो क्या वे दोनों एक नहीं हैं? पौलुस इसे स्पष्ट करते हुए कहता है, कदापि नहीं। अब पौलुस स्पष्ट करेगा कि व्यवस्था भली है, वह परमेश्वर की इच्छा पूरी करती है। समस्या व्यवस्था के साथ नहीं है, समस्या हमारे साथ है, क्योंकि देह दोषी है। इस अध्याय के शेष भाग में पौलुस अत्यधिक वैतिक है। ध्यान दीजिए कि वह प्रथम पुरुष सर्वनामों का प्रयोग कर रहा है, और हम, मैं, मुझ आदि। इस भाग में प्रथम पुरुष सर्वप्रथम 47 बार आए हैं। अनुभव की बातें पौलुस के आंतरिक संघर्षों से उत्पन्न है। उसने अपने नए स्वभाव के सामर्थ्य में परमेश्वर के लिए जीने का प्रयास किया और पाया कि यह असंभव है। व्यवस्था ने पौलुस पर पाप के अधिकार को प्रकट किया है। व्यवस्था उसके हृदय का एक्सरे थी। यदि आप व्यवस्था को अपने जीवन में लाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर का वचन दर्पण कहलाता है, वह हमारी सच्चाई को प्रकट करता है। यदि आपके चेहरे पर दाग है तो दर्पण उसे प्रकट करता है, परंतु उसे मिटा नहीं सकता। परंतु परमेश्वर के पास उसके निवारण का एक स्थान है। मेरे प्रियो, लोहू से भरा एक सोता है, इमानुएल की धमनियों से निकला, और पाप उस सोते में डूबकर सब दोष के दाग धोते हैं। जी हाँ, व्यवस्था पाप की अति को प्रकट करती है। व्यवस्था दोषी नहीं है, पुराना आदम का स्वभाव दोषी है। व्यवस्था में विहित निषेधाज्ञाएं देह की दुर्बलता को उभारती हैं। वह प्रकट करती हैं कि हम पापी हैं। एक बार एक प्रशिक्षण किया गया कि देखें, स्त्रियां स्वयं को अधिक निहारती हैं या पुरुष। अतः उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर एक दर्पण रख दिया। मैं तो उससे कह देता कि स्त्रियां स्वयं को अधिक निहारती हैं, परंतु परीक्षण के परिणाम इसके विपरीत निकले। हम सब अपने आप को देखना पसंद करते हैं, हम सब दर्पण देखना पसंद करते हैं, एक को छोड़ परमेश्वर का वचन। हम उसे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वह कहता है कि हम आशा रहित पापी हैं, अर्थात हम पापी हैं। रोमियों के पत्र 7 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। व्यवस्था दोषारोपण की सेवा है। व्यवस्था हमें दोषी ठहराने की अपेक्षा और कुछ नहीं कर सकती। रोमी के पत्री 7 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। मेरे प्रियो, व्यवस्था के अनुसार जीने वाले की त्रासदी है, वह उसे जीवन का मार्ग नहीं दिखाती है। यह सत्य है कि परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 1 पद में, जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। उस पर चलना ही तो कठिन था। व्यवस्था में कोई दोष नहीं था। दोष तो उसमें था जिसने यह सोचा कि व्यवस्था जीवन और सामर्थ्य प्रदान करेगी। उसने कुछ नहीं दिया। उसने तो मनुष्य की दुर्बलता, अयोग्यता और पाप को प्रकट किया है। यदि ऐसी व्यवस्था जो जीवन दे तो वह परमेश्वर देता है। आप गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 21 पद को देख सकते हैं, जीवन और मसीही आचरण व्यवस्था से प्राप्त नहीं होते हैं। मेरे मित्रों, मैं एक उदाहरण देता हूं। कार एक अत्यधिक उपयोगी साधन है, परंतु यदि वह एक अयोग्य चालक के हाथ में हो तो वह खतरनाक वरन विनाशकारी हो सकती है। सच तो यह है कि वह मृत्यु का साधन बन जाती है। इसमें दोष कार का नहीं, चालक का होता है। समस्या मनुष्य के साथ है और वही अपराधी है। रोमियो के पत्री 7:11 में लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। यहाँ फिर से पाप को वैतिक रूप दिया गया है और वह प्रलोभन देने वाला है। अदन की वाटिका के बाहर प्रत्येक मनुष्य को पाप ललचाता है। स्वयं एवं परमेश्वर के संबंध में अदन की वाटिका में शैतान ने मनुष्य को विश्वास दिलाया था कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है और मनुष्य स्वयं परमेश्वर से अलग एक परमेश्वर बन सकता है। पाप मनुष्य की संतान को विश्वास दिलाता है कि वे व्यवस्था पालन कर सकते हैं और परमेश्वर की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वह झूठा मार्ग दिखाता है जो मृत्यु लाता है, और पौलुस कहता है कि वह जीवनदायक थी परंतु उसने पाया कि वह उसे मृत्यु में ले आई। पाप अंततः व्याप्त हो जाएगा क्योंकि व्यवस्था पाप का ज्ञान लेकर आई है। मनुष्य के पास कोई भी बहाना नहीं है। फिर वही बात आती है कि समस्या व्यवस्था के साथ नहीं, मनुष्य के साथ है। हम रोमियो के पत्र 7:12 में पढ़ते हैं, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। ध्यान दें, समस्या मनुष्य की है। जीवन के प्रश्न में मनुष्य मरा हुआ है, वही डावाडोल है, विश्वास के योग्य नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, हम रोमियो 7:13 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। ध्यान दें, यह एक विचित्र स्वविरोधी कथन है। यह अच्छी बात की विकृति है। आज्ञाएं जीवन संचार में पूर्ण रूपेण अक्षम थी। मनुष्य को बाहरी सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि व्यवस्था पाप की गहराई को बढ़ा रही थी। रोमियो के पत्र 7:14 में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जी हां, यह पौलुस की गवाही है। हम जानते हैं, अर्थात विश्वासी परस्पर सहमत हैं, व्यवस्था आत्मिक इसलिए थी कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई थी और परमेश्वर के वचन का अंग थी। दूसरे शब्दों में वह धर्मशास्त्र की अभिव्यक्ति थी। उदाहरण के लिए 1 कुरिन्थियों के पत्र 10:4 में चट्टान को आत्मिक कहा गया है क्योंकि वह पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट हुई थी। जंगल में इसराइल को आत्मिक भोजन और आत्मिक जल जो पवित्र आत्मा के प्रावधान के कारण आत्मिक कहलाया था। लेकिन अब यहाँ, परंतु मैं शारीरिक अर्थात देह, यहाँ देह का अर्थ हड्डी और मांस से नहीं है। हमारी देह उदासीन है और बुरे एवं भले दोनों के लिए काम करती है। यह उस कार के समान है जिसका मैंने उदाहरण थोड़े समय पहले दिया था। यहाँ शरीर पुराने मन, आत्मा और स्वभाव का प्रतीक है। वे शरीर को काम में लेते हैं, अतः देह पाप से दूषित हो गई है। उदाहरण के लिए एक शिशु के चेहरे को देखें, उसके बाद 50 वर्ष बाद उसे फिर देखें। पाप ने देह की सतह पर भी अस्थाई रेखाएं डाल दी है। देह निष्क्रिय है और परमेश्वर के निमित्त उसमें न तो क्षमता है और न ही संभव्यता। वह पापी स्वभाव के वश में है जिसकी शाखाएं देह और मन में और उसके अंतरम में, उसके भागों में पहुंच गई है। मस्तिष्क केवल बुराई की युक्ति का साधन है। हमारे तांत्रिक तंत्र दुष्टता करने के लिए तत्पर रहते हैं। मनुष्य का मन प्राणवन से भी दुष्ट है। वह दुष्टता करना चाहता है और देह उसका साथ देती है। मेरे मित्रों, अब हम देखते हैं उद्धार प्राप्त आत्मा का संघर्ष। यहाँ दो स्वभाव में परस्पर संघर्ष है, पुराना स्वभाव और नया स्वभाव। इस भाग में दो मैं हैं। पहला मैं पुराना स्वभाव है जो अपना अधिकार दर्शाता है। जो मैं चाहता हूँ, यह नए स्वभाव की कामना है, वह नहीं किया करता, परंतु पुराना स्वभाव विद्रोह करके करने नहीं देता, जिससे मुझे घृणा आती है। यह नया स्वभाव है जो घृणा करता है और वही करता हूं। पुराना स्वभाव बेधड़क आगे बढ़कर के करता है। मेरे मित्रों, क्या आपको अपने मसीही जीवन में इसका अनुभव हुआ है? क्या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसके करने के बाद आपको स्वयं से घृणा होती है? तब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैंने तुझे कैसा निराश किया है। मेरे विचार में परमेश्वर की प्रत्येक संतान का यह अनुभव है। पौलुस यहाँ अपने स्वयं के अनुभव का उल्लेख कर रहा है। उसके जीवन में ऐसा प्रतीत होता है कि तीन समय हुए हैं। एक, जब वह एक घमंडी व्यवस्था पालक फरीसी था, बलिदान चढ़ाकर और अन्य प्रयास करके परमेश्वर के साथ उचित संबंध बनाने की मूर्खता कर रहा था, जबकि व्यवस्था उसे सदा ही दोषी ठहरा रही थी। और दूसरा समय हुआ था जब दमिश्क के मार्ग में मसीह से उसकी भेंट हुई और घमंडी युवा फरीसी ने मसीह को अपना उद्धारक प्रभु स्वीकार किया, परंतु अब भी यही सोचता था कि वह मसीही जीवन जीने के लिए अपने आप में सक्षम है। उसके नए स्वभाव ने कहा, मैं अब परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परंतु वह असफल रहा और कुछ समय वह संघर्ष और असफलता के घेरे में रहा। मित्रों, मैं नहीं जानता कि उसका यह समय कितना लंबा था, परंतु मेरे विचार में वह अधिक समय इस दशा में नहीं था। तब वह दिन भी आया जब वह जयवंत हुआ, परंतु वह पौलुस नहीं था, वह मसीह यीशु था। पौलुस ने सीख लिया था कि मुख्य बात क्या है, अर्थात समर्पण और वशीभूत होना और पवित्र आत्मा को उसके द्वारा मसीही जीवन जीने देना। रोमियो की पत्री 7:16 में लिखा है, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। मेरे प्रियो, जब पुराना स्वभाव आज्ञा तोड़ता है, यहां लालच करना है, तब नया स्वभाव व्यवस्था से सहमत होता है कि लालच करना बुरा है। पौलुस व्यवस्था से संघर्ष नहीं कर रहा था क्योंकि उसने व्यवस्था का उल्लंघन किया। वह विश्वासी होने के कारण मानता था कि व्यवस्था भली है। तब हम आगे पढ़ते हैं रोमियो के पत्री 7:17 में, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों में मैं नहीं या नया स्वभाव जो करता है, परंतु पाप पुराना स्वभाव जो मुझ में है। देखिए कि पौलुस में अब भी पुराना स्वभाव था। रोमियो 7:18 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे प्रियो, इस संघर्ष में पौलुस ने दो बातें सीखी थी। हम विश्वासियों को भी ये बातें सीखना आवश्यक है। मुझ में अर्थात पुराना स्वभाव जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। क्या आपने यह सीख लिया है? क्या आपको भी यह बोध हुआ है कि आपको या आप में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है? ओह, हम इसे कितने विश्वासी सोचते हैं कि हम दैहिक प्रयास द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अनेक विश्वासी जो इस तथ्य की खोज नहीं कर पाए हैं, वे दीमकों की नाई व्यस्त रहते हैं और कलीसियाओं में यही प्रभाव डालते हैं। वे मधुमक्खियों की नाई व्यस्त तो रहते हैं, परंतु शहद एकत्र नहीं करते। वे कलीसिया में पद प्राप्त कर लेते हैं और सोचते हैं कि वे परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, यद्यपि वे कलीसियाई कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। मसीह यीशु के साथ उनका जीवन संबंध नहीं होता है। उनके जीवनों से मसीह प्रकट नहीं होता है। वे अपनी क्षमता में दैहिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पौलुस का सबक नहीं सीखा है। मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत रूप से कहें तो मैं जो भी अपने आप करता हूं उससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर उसको काम में नहीं लेगा। जब काम दैहिक हो तो वह अच्छा नहीं है। क्या आपने यह सीख लिया है? यह एक महान शिक्षा है। प्रभु यीशु ने कहा, योहन्ना रचित सुसमाचार 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और वह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु पहला योहन्ना के पत्री 3:9 में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। ओह, यह कैसा अद्भुत बात है। हमें नया स्वभाव दिया गया है और वह नया स्वभाव पाप नहीं करता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नया स्वभाव कभी पाप नहीं करेगा। यदि मैं पाप करता हूँ तो वह पुराना स्वभाव है, नया स्वभाव ऐसा नहीं करेगा। जी हाँ, नया स्वभाव पाप से घृणा करता है। यह नया स्वभाव मुझे रात में नहीं सोने देता है। वह कहता है, देख तू गलत है, तुझे सुधार करना है। पौलुस ने कुछ और भी सीखा जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वरन हमें सीखना भी चाहिए। मेरे प्रियो, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। उसने यह देखा कि पुराने स्वभाव कुछ अच्छा नहीं और नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं। नए स्वभाव परमेश्वर की सेवा करना चाहता है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का वैरी है। यह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और न ही कभी हो सकता है। देखिए रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 7 पद में, परंतु नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। मुझे स्मरण है कि जब मैंने मसीही जीवन आरंभ किया था तब मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता था। यही वह समय था जब मैं मुंह के बल गिर पड़ा और मैं इससे अधिक बुरा कभी नहीं गिरा। मैंने सोचा था कि मैं स्वयं कर सकता हूँ, परंतु मैंने देखा कि नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है और यही कारण है कि प्रचारकों के सभा में अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मुझे विश्वास नहीं होता। आराधना में 90% निर्णय उन विश्वासियों द्वारा लिए जाते हैं जो अपने मसीह जीवन में पराजय का जीवन जी रहे हैं। वे जो कह रहे हैं वह वास्तव में यह है, मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूँ, मैं अधिक अच्छा काम करना चाहता हूँ। सभाओं में प्रायः प्रचारक कहता है कि जो आज परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं हाथ उठाएं। वे जो परमेश्वर के अधिकाधिक निकट आना चाहते हैं हाथ उठाएं। वे जो परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हैं आगे आ जाएं। जिस पल प्रचारक यह कहता है उसी पल उसने मुझे वशीभूत कर लिया। मैं यही तो करना चाहता हूं। मेरा नया स्वभाव कहता है मैं निश्चय ही परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं, परंतु उसमें सामर्थ्य नहीं है। असंख्य विश्वासी इस बात को समझने से चूक जाते हैं। कुछ लोग तो वर्षों से वेदी पर आ रहे हैं और बस वे इतना ही कर पाते हैं, केवल सामने आना और वापस जाना। इसके आगे वे उन्नति कुछ भी नहीं करते। ओह, यह सत्य समझा, अंतर्ग्रहण करना उनके लिए कैसा आवश्यक है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय के 19 पद में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है? रोमियो के पत्र 7 के 20 पद में आगे लिखा है, परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे मित्रों, हमारा पुराना स्वभाव हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करता है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 21 पद में आगे हम पढ़ते हैं, सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। मेरे मित्रों, जब आप आत्मा में परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो क्या आपने कभी अनुभव किया कि पुराना स्वभाव बुराई लाने के लिए वहां है? अति संभव है कि कोई बुरा विचार आपके मन में उठे। परमेश्वर की हर एक संतान चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि उसके प्रत्येक कार्य में प्रत्येक पल बुराई वहां उपस्थित रहती है। इस तथ्य को समझने से चूक जाना मसीह जीवन का विनाश है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भीतरी मनुष्यत्व मतलब नया स्वभाव है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 23 पद में आगे लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था की बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। आप उद्धार पाने पर पुराने स्वभाव से मुक्ति नहीं पा लेते हैं, तथापि आपके नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था पुराने स्वभाव का परमेश्वर से बैर, जिसके कारण परमेश्वर की सत्य निष्ठता या संतान पुकार उठती है, जैसे पौलुस कहता है। रोमियो के पत्र 7 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, यह किसी उद्धार से वंचित मनुष्य की पुकार नहीं है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। यह एक उद्धार प्राप्त मनुष्य की पुकार है। अभागा शब्द में संघर्षों के कारण थकान का भाव है। मुझे कौन छुड़ाएगा? वह असहाय है, वह चित पड़ा हुआ है, वह हार चुका है। वृद्ध याकूब की नाई वह लंगड़ा हो गया है। वह बाहरी सहायता की पुकार कर रहा है। हम रोमियों के पत्र 7:25 में पढ़ते हैं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ध्यान दीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो मुक्तिदाता है का धन्यवाद हो। यह पौलुस की घोर संकटकालीन पुकार का उत्तर है। परमेश्वर ने मुक्ति दिलाई है यह अध्याय 8 की प्रस्तावना है, जिसमें मुक्ति का सविस्तार वर्णन है। उद्धार एवं पवित्रीकरण दोनों ही मसीह के द्वारा प्राप्त होते हैं। उसने हमें वह सब दिया है जिसकी हमें आवश्यकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मुझे और आपको अपने जीवन में झांक करके देखने की आवश्यकता है कि आज हम किसके द्वारा बंधे हुए हैं। क्या हम व्यवस्था के अधीन हैं या हम मसीह यीशु के निकटता में हैं? आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है कि क्या मुझ पर पुराना स्वभाव हावी है या नया स्वभाव। मसीह का वह आत्मा जो मुझ में प्राप्त है वह मुझे चलाता है या पुराना स्वभाव या पुराना मनुष्य तो मुझे चलाता है। आज मुझे और आपको निर्णय लेना है, अपने आप को झांक करके देखने की आवश्यकता है और इस बात को स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पौलुस स्वयं कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। जी हाँ, परमेश्वर मुझे और आपको भी सामर्थ्य देना चाहता है। आइए आज के इस अध्ययन को अपने जीवन में ग्रहण करें। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही नई बातों को सीखा है और उसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
दिखती है मुझे।